नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर आज मैं हूं नवीन सक्सेना, और आज के इस अंक में इन खबरों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल विशेषज्ञ राकेश थपलियाल। राकेश, स्वागत है आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद।
नजर डाल लेते अब तक की खास खेल खबरों पर। बकाऊ ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स में त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश ने पहली पारी में 3 विकेट पर 107 रन बनाए। महिला टीम T20 विश्व कप में भारत अपने अभियान की शुरुआत 4 अक्टूबर को दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगी, और भारत पहली बार दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए कल से बेंगलुरु में विश्व जूनियर और महिला शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। राकेश, सबसे पहले बात हम बैडमिंटन की करेंगे और सीधा आपको मकाऊ ओपन में लिए चलते हैं। महिला डबल्स का मुकाबला भारत की त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद शानदार खेल का प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में जगह बना ली, और ये जोड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रही है।
बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे देखिए, ये इनका दूसरा सेमीफाइनल खेलने जा रही है। ये सिंगापुर ओपन में भी जो सुपर 750 वाला टूर्नामेंट था उसके भी ये सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, तो एक तरह से देखा जाएगा कि बेहतरीन प्रदर्शन है। और मुझे लग रहा है कि ये सुपर 300 का टूर्नामेंट है, तो इसमें निश्चित रूप से ये खिताब जीतती हुई जोड़ी नजर आ रही है। जिस तरीके का इनका प्रदर्शन रहा है, दोनों जो लड़कियां हैं 21 साल की हैं टेरेसा और गायत्री, और बहुत जबरदस्त इनका अनुभव रहा है। और मुकाबला देखिए, ये थर्ड सीडेड हैं इसमें, और विश्व की रैंकिंग अगर इनका देखा जाए तो 23वें नंबर पे है ये जोड़ी, तो बहुत अच्छा इनका प्रदर्शन है। और ये उम्मीद करते हैं कि इस टूर्नामेंट को ये जीत के ही लौटेंगे।
राकेश, श्रीकांत को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जब भी मेजर टूर्नामेंट हो रहे हैं वो क्वार्टर फाइनल तक हार ही जा रहे हैं। कहीं कुछ खेल में कमी आई है?
देखिए, मुझे लगता है कि इस साल मई के महीने में जो उनको चोट लगी थी उससे वो उबर नहीं पाए हैं, और ओलंपिक्स भी मिस किया, उससे पहले भी उन्होंने ओलंपिक्स मिस किया था, तो ये बड़ी थोड़ी हैरानी की बात होती है। और जहां तक सिंगल्स की बात है, देखिए वो वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं, तो बहुत जबरदस्त प्रदर्शन है। और एक समय ऐसा था कि जब किदांबी श्रीकांत डबल्स में ही खेलते थे, एक विदेशी कोच हमारे आए कुछ साल पहले, उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना, उन्होंने उनको कहा कि भाई आप सिंगल्स क्यों नहीं खेलते, तो जब वो सिंगल्स खेलने लगे तो उसके बाद उनका प्रदर्शन में निखार आया और वो वर्ल्ड नंबर 1 तक पहुंचे।
राकेश, बहुत संक्षेप में, क्या हम ये मानकर चलें कि जो भारतीय महिला डबल्स की जोड़ी है वो अश्विनी पोनप्पा और ज्वाला गुट्टा के बाद सबसे बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है?
बिल्कुल, देखिए एकदम ये युवा हैं और इनके पास बड़ा अच्छा अनुभव है, और गोपीचंद जैसे कोच का उनके अकेडमी में खेलती हैं, साथ खेलती हैं, और अच्छा अनुभव उनके पास है। गायत्री तो जो हमारे कोच गोपीचंद है उनकी बेटी भी है, और दोनों देखिए 21-21 साल की हैं, एक बराबर माइंडसेट एक जैसा है, अच्छे कोचेज उनके साथ लगे हुए, मेहनत हो रही है। और प्रदर्शन जैसे देखिए सिंगापुर ओपन के भी वो सेमीफाइनल में जोड़ी पहुंची थी।
बैडमिंटन के बाद अब आपको हम सीधा कानपुर लिए चलते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में पहले दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश ने पहली पारी में 3 विकेट पर 107 रन बना लिए हैं। आज दिन भर खेल कैसा रहा, सुनते हैं विशाल से।
भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच का पहला दिन बारिश के नाम रहा। लंच के बाद कुछ ओवर का ही खेल हुआ था कि फिर से बारिश के कारण खेल संभव नहीं हो पाया। बांग्लादेश ने इस दौरान 3 विकेट खोकर 107 रन बना लिए। बारिश के कारण सुबह का खेल कुछ देरी के साथ शुरू हुआ। बांग्लादेश की टीम ने इस सत्र में 2 विकेट गंवाए। लंच के बाद भी मैच थोड़ी देरी से शुरू हुआ। इस बीच ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को आउट कर 3रा विकेट झटका। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आकाशदीप ने भारत को पहली सफलता 9वें ओवर में दिलाई, जब उन्होंने जाकिर हसन को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच करा दिया। जाकिर हसन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद आकाशदीप ने शादमान इस्लाम को LBW कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। शादमान ने 36 गेंदों पर 24 रन बनाए। 2 विकेट 29 रन पर गिरने के बाद मोमिनुल हक और कप्तान शांतो ने 3रे विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी की, लेकिन अश्विन ने नजमुल शांतो को LBW कर भारत को तीसरी सफलता दिलाई। कल दूसरे दिन का खेल आधा घंटा पहले शुरू होगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
राकेश, वर्षा बाधित ये खेल रहा है, कल भी आधा घंटा पहले शुरू होगा, लेकिन जिस तरह से चेन्नई में हमने देखा था स्पिनरों का दबदबा रहा था, यहाँ पे व्हाट डू यू थिंक, आकाशदीप रहेंगे या फिर एक बार हमारे स्पिनर्स की जोड़ी कब्जा करेगी?
देखिए एंड आते आते तो हम देखेंगे कि स्पिनर्स इस मैच में हावी रहेंगे, क्योंकि यहाँ की पिच परंपरागत रूप से बल्लेबाजों की बहुत मददगार रहती है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि 3 साल के बाद यहाँ पर मैच हो रहा है, पिच का मिजाज कैसा होगा वो कोई भी इसको अभी समझ नहीं पा रहा है। फर्क इतना दिख रहा है कि वहां लाल मिट्टी दिखती थी या काली मिट्टी दिख रही है, लेकिन एक ये बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में मैच हो रहे हैं और स्पिनर फ्रेंडली जो पिचेस मानी जाती हैं वहां पर हम 3 तेज गेंदबाजों के साथ उतर रहे हैं
जी,
और टॉस जीतने के बाद आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं, ये एक मतलब पहले तो माना जाता था कि टॉस जीतो और बल्लेबाजी करो, हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम टाइम ये होता था, लेकिन ये चीज यहां पर बदलाव आया। बांग्लादेश के कप्तान ने पहले टेस्ट में टॉस जीता तो उन्होंने गेंदबाजी की, हमने यहाँ टॉस जीता तो हमने भी गेंदबाजी की। लेकिन आप देखिए कि क्या होता है कि आपको एक संतुलन बनाए रखना है, एक तो विजयी कॉम्बिनेशन आपके पास था
जी,
और ये पिच ऐसी कोई बहुत बड़ी टर्नर लग नहीं रही होगी कप्तान को, तभी उन्होंने जो है उसी जो पहले टेस्ट की विजेता टीम थी हमारी उसको बरकरार रखा है वहां पर, और जिस तरह से आकाशदीप ने गेंदबाजी की है, क्योंकि देखिए सब लोग ये कह रहे थे कि अगर एक बदलाव होगा तो कोई फास्ट बॉलर बाहर बैठेगा तो वो आकाशदीप हो सकते हैं, उनकी जगह एक स्पिनर को खिलाया जा सकता है, शायद वो कुलदीप यादव हो सकते हैं, लोकल बॉय भी है उत्तर प्रदेश के, लेकिन आकाशदीप ने जिस तरह से आज गेंदबाजी की है तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी जगह और पक्की करने के लिए, अब उनके ऊपर शायद जल्दी से लोग ये नहीं कहेंगे कि भाई आकाशदीप को बाहर बिठाया जाएगा, बहुत अच्छी उन्होंने आज गेंदबाजी की, 2 विकेट जल्दी आपको दिलाए, ऐसा ही उन्होंने पहले टेस्ट मैच में भी किया था, लगातार 2 विकेट उन्होंने चटकाए थे, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज हो रही है। फास्ट बॉलर अगर आपने टॉस जीत के पहले आप बैटिंग करते हैं, वर्षा की बाधा नहीं होती तो शायद और विकेट हमारी झोली में होते, तो ये फैसला पहले गेंदबाजी करने का वो और ज्यादा सार्थक नजर आता, लेकिन बारिश ने निराश किया। ग्रीन पार्क में देखिए इतने बड़ी संख्या में दर्शक आए थे कि उनका शोर भी इतना सुनाई दे रहा था कि कमेंट्री को सुनना भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, तो मुझे लगता है कि दर्शकों को बड़ी निराशा होती है कि इतने साल के बाद वहां पर टेस्ट क्रिकेट हो रहा था उसको देखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे।
और अब बात महिला T20 विश्व कप की। महिला ICC T20 विश्व कप अगले महीने की 2 तारीख से दुबई में खेला जाएगा। सेमीफाइनल मुकाबले 17 और 18 अक्टूबर को होंगे जबकि फाइनल 20 अक्टूबर को होगा। भारत की महिला टीम विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत 4 अक्टूबर से दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगी। और जानकारी मुकेश से।
भारतीय क्रिकेट टीम के लिए यह साल अब तक का शानदार रहा है। एक तरफ रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने बारबाडोस में T20 विश्व कप जीतकर भारत का परचम बुलंद किया और अब हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय महिला टीम संयुक्त अरब अमीरात में तिरंगे की शान बढ़ाने पहुंच चुकी है। भारत की महिला टीम T20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत 4 अक्टूबर को दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ करेगी। क्रिकेट फैंस को टूर्नामेंट के आगाज का बेसब्री से इंतजार है। महिला टीम पिछली बार इस खिताब से बेहद करीबी से चूक गई थी, लेकिन उस वक्त कहीं न कहीं नॉकआउट मुकाबले का दबाव टीम इंडिया पर हावी हो गया था, मगर इस बार यह टीम हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के रूप में सलामी जोड़ी है जो अच्छे अच्छे बॉलिंग लाइनअप को धूल चटाने का मादा रखती है। मिडिल ऑर्डर में खुद हरमनप्रीत जिम्मा उठाएंगे जबकि फिनिशर की भूमिका में ऋचा घोष और जेमिमा रोड्रिक्स जैसी धाकड़ खिलाड़ी शामिल है। गेंदबाजी की बात करें तो टीम के पास पूजा वस्त्रकर, अरुंधति रेड्डी और रेणुका सिंह जैसी खिलाड़ी हैं। ये टीम युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का एक अच्छा मिश्रण है। इस बार टीम इंडिया से और उम्मीद है कि बारबाडोस के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात से भी टीम इंडिया ट्रॉफी लेकर लौटेगी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
राकेश, क्रिकेट को लेकर भारतीय खिलाड़ियों की उम्मीदें, खिलाड़ियों की भी उम्मीदें और फैंस की भी उम्मीदें बहुत होती हैं। क्या लगता है कि इस बार दुबई में परचम लहराएगा?
देखिए बिल्कुल लहराना चाहिए, क्योंकि हमने देखा चाहे वो 50 ओवर की क्रिकेट हो चाहे T20
जी,
हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रही हैं, बहुत अच्छा खेलती हैं, लेकिन जो एक फाइनल मैच को जीतने का मंत्र होता है मुझे लग रहा है वो कहीं ना कहीं उनसे मिस हो जाता है। तो ये एक ऐसा साल है इसमें उनके उम्मीद है कि भाई यहां से ये, क्योंकि इंडियन कंडीशंस हैं, सब कॉन्टिनेंट की कंडीशंस में जब आप खेलते हैं तो एक आपका अपने घर जैसा माहौल है वहां पे, और मुझे लगता है कि उससे उनको फायदा मिलना चाहिए। वहां की पिचेज ऐसी हैं जिसमें आप ज्यादा खेलने के आदी होते हैं, जैसे पुरुष क्रिकेट की बात की तो वो अमेरिका में और वेस्टइंडीज में हुआ था, तो वो पिचे हमारे माकूल नहीं थी, लेकिन फिर भी हम चैंपियन बने, तो उससे कहीं ना कहीं प्रेरणा लेके जो हमारी महिला टीम है इनको भी मुझे लगता है कि चैंपियन बनने से कम पे हिंदुस्तान के जो दर्शक है उनको संतोष नहीं होगा।
राकेश कुशनब लगातार सामने आते हैं, स्मृति मंधाना हुई, शेफाली हुई, या फिर फिनिशर की भूमिका में ऋचा हुई, जेमिमा रॉड्रिक्स हुई, ये तमाम लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस बार बेहतर खेल का प्रदर्शन करेंगे और लगातार करते भी आ रहे हैं।
वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट के अंदर ना आपको अनुभवी और युवा खिलाड़ी दोनों का एक बेहतरीन मिश्रण आपको रखना पड़ता है
जी।
और इसमें देखिए आपको एक खिलाड़ियों की सीमित संख्या होती है, जो सीरीज में आप 16 रख सकते हैं, इसमें आपको एक संख्या सीमित संख्या मिलती है, तो उसके अंदर आपको जो बेहतरीन हमारे पास मिश्रण है, हमारी जो लड़कियों की सबसे बड़ी खासियत है कि फास्ट बॉलिंग करती है तो स्पीड नजर आती है, स्पिन करते हैं तो लगता है कि बहुत अनुभवी नजर आती है, और शॉट्स जिस तरह के खेलते हैं वैसे वो पुरुषों को बिल्कुल उसमें वहां कंपटीशन देती हैं, तो बहुत शानदार उनका प्रदर्शन रहना चाहिए।
और अब चलते हैं शतरंज के विस्तार पर। भारत पहली बार दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए कल से बेंगलुरु में विश्व जूनियर महिला शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है। सुनते हैं आकर्षिता की रिपोर्ट।
अखिल भारतीय दृष्टिबाधित शतरंज महासंघ AICFP इस महीने की 28 तारीख से 6 अक्टूबर तक बेंगलुरु के चांसरी पेवेलियन होटल में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए IBCA विश्व जूनियर और विश्व महिला शतरंज चैंपियनशिप के 12वें संस्करण की मेजबानी करने जा रहा है। भारत को इस आयोजन की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई देश चुना गया है। इस आयोजन में पूर्व विश्व चैंपियन, अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स और फेडरेटेड खिलाड़ी अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस रोमांचक टूर्नामेंट में अमेरिका, स्वीडन, पोलैंड, यूक्रेन सहित कई देशों के कुल 32 खिलाड़ी भाग लेंगे। एशियाई पैरा खेलों में पदक जीतने वाली भारत की मेघा चक्रवर्ती और तिजान गवार के साथ ही अन्य जूनियर और महिला खिलाड़ी भी इसमें भाग लेंगी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। पिछले 26 वर्षों में भारत ने 2 ओलंपियाड, 6 विश्व शतरंज चैंपियनशिप, 10 विश्व जूनियर, 4 महिला विश्व चैंपियनशिप, 4 विश्व कप टीम स्पर्धाओं और 3 अंतर्राष्ट्रीय ओपन टूर्नामेंटों में भाग लिया है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
कल से शतरंज की एक और बिसात बिछने वाली है। चेस ओलंपियाड में हमारी टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया है, क्या उम्मीदें हैं?
देखिए वो चेस ओलंपियाड में जो प्रदर्शन किया, मुझे लगता है कि कहीं से कहीं ना कहीं जो ये दृष्टिबाधित हमारी खिलाड़ी हैं, ये भी उनसे प्रेरित होकर उसको करेंगी, बेहतरीन प्रदर्शन वहां पर करेंगी। इतना अनुभव हिंदुस्तान के पास है, लगातार इतने सालों से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये अलग बात है कि पहली बार मेजबानी कर रहे हैं, तो हमारे पास जो है दोहरी भूमिका निभानी होगी कि अच्छी मेजबानी भी हम कर सकें और अच्छा प्रदर्शन भी यहां पर कर सके, क्योंकि किसी भी चैंपियनशिप की मेजबानी कोई भी देश तभी लेता है जब उसके खिलाड़ी उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने की क्षमता रखते हो।
इस बीच भारत ने युवा टेबल टेनिस खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन करते हुए सऊदी अरब के दमन में यूथ कंटेंडर प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक सहित 27 पदक जीती हैं। सुनते हैं शक्ति को।
टेबल टेनिस में भारत की लड़कियों ने अंडर 19 और अंडर 15 दोनों वर्गों में सभी स्थान हासिल किए। इस तरह भारत ने 7 रजत और 14 कांस्य पदक भी अपने नाम किए। हालांकि प्रतियोगिता में टेबल टेनिस की दिग्गज टीमों के प्रमुख खिलाड़ी शामिल नहीं थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। लड़कियों ने अंडर 19 वर्ग में भारत की सुहाना सैनी, तनिषा कोच्चा, सयाली वानी और प्रीथा वर्तिका ने क्लीन स्वीप किया, तो वहीं लड़कों की अंडर 19 स्पर्धा में अंकुर भट्टाचार्जी ने सटीक शॉट लगाते हुए रजत पदक अपने नाम किया, जबकि पीबी अभिनंद और जोशी मोदी ने कांस्य पदक जीता। लड़कों की अंडर 17 श्रेणी में प्रियानुज भट्टाचार्य को चीनी ताइपे की लियू सिंग मिंग से करीबी अंतर से हारने के कारण रजत पदक से संतोष करना पड़ा, जबकि अभिनंद ने कांस्य पदक हासिल किया। एम हंसनी ने लड़कियों की अंडर 17 का फाइनल जीता, तो दिव्यांशी भौमिक और जेनिफर वार्गीज ने कांस्य पदक जीते। लड़कों की अंडर 15 श्रेणी में भारत के सार्थक आर्य ने कांस्य पदक हासिल किया। लड़कियों की इसी श्रेणी में काव्या भट्ट, हंसनी, सिंड्रेला और दिव्यांशी ने क्लीन स्वीप किया। मिक्स्ड डबल अंडर 19 स्पर्धा में मोदी तनिषा की जोड़ी ने हमवतन मुथु राजशेखरन, जेनिफर वार्गीज को हराकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि कांस्य पदक भारत की सार्थ मिश्रा, सयाली वानी और सुहाना सैनी, दिव्या श्रीवास्तव की 2 जोड़ियों को मिला। आर्य काव्या की मिश्रित जोड़ी ने इसी स्पर्धा के अंडर 15 वर्ग में स्वर्ण पदक, जबकि साहिल रावत दिव्यांशी की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
इस बीच पेरिस ओलंपिक में रजत पदक और डायमंड लीग फाइनल में दूसरा स्थान हासिल करने के बाद स्वदेश लौटे स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से आज खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मुलाकात की और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर लिखा कि हमारे ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने आज दिल्ली में उनसे मुलाकात की और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। और राकेश, अब वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, आगे और खेल खबरों पर चर्चा करें। आज हमारे साथ अपनी बातें साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया।
आज के संत में बस इतना ही, मुझे नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।